हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बीती रात जैसे अगली सुबह भी इन तीनों जोड़ों के लिए बेहद खास और हसीन थी। जब उन्होंने एक दूसरे को अपने करीब महसूस किया था और उनके दिन की शुरुआत रात के मोहब्बत भरे एहसासों के साथ अपने दिलबर की पनाहों में हुई थी। एक दूसरे पर नज़र पड़ते ही रात की हसीन यादें उनकी आंखों के आगे जीवंत हो उठती और उनकी खुशी लबों पर मुस्कान बनकर बिखर जाती। मृणाल कुश को अपनी बाहों में उठाकर नहलाने लेकर गया, पर उठते के साथ उसने एक ही जिद पकड़ी हुई थी कि उसे मम्मा के पास जाना है, मतलब धृति के पास जाना चाहता था वो। बीते दिन वो धृति के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता सका था, इसलिए अब उसके पास जाने को मचल रहा था। मृणाल किसी तरह समझा बुझाकर उसे बाथरूम में ले गया। जब उसे नहलाकर टावल में लपेटकर वापस लाया तो निहारिका उसके कपड़े निकालकर रेडी खड़ी थी। मृणाल ने बाथरूम से बाहर कदम रखा तो निहारिका मुस्कुराते हुए उसके पास चली आई और कुश को लेने के लिए अपनी बाहों को फैलाया, पर उसके पास आने की जगह कुश ने रूठते हुए अपने मोटे मोटे गालों को फुला लिया और मृणाल से लिपटते हुए फिर से जिद करने लगा।
नहीं, मुझे आपके पास नहीं दाना, मुझे मम्मा के पास जाना है। बेबी को मम्मा चाहिए, डैडा बेबी को मम्मा के पास लेकर चलो ना, बेबी तो उनकी लाडा रही है, बेबी को मम्मा के पास जाना है।
बेचारा मृणाल सुबह से उसकी जिद से तंग आ चुका था। उस पर निहारिका के सामने उसका धृति को मम्मा कहना भी उसे पसंद नहीं आ रहा था। उसने कुश को समझाने की कितनी कोशिश की थी, पर कुश कुछ समझना ही नहीं चाह रहा था। मृणाल ने बेचारगी से निहारिका को देखा। कुश के आगे लाचार था वो, बच्चा था वो, उसे प्यार से समझाया ही जा सकता था, डांट फटकार कर जबरदस्ती अपनी बात नहीं मनवा सकता था। निहारिका समझदार थी, मृणाल को यूं परेशान होते देखकर उसने हल्की मुस्कान लबों पर सजाते हुए शांत स्वर में कहा, इट्स ओके, मैं समझती हूँ। जब से कुश का बर्थ हुआ है उसने धृति को ही अपनी मम्मा के रूप में देखा है। उसके लिए भी आसान नहीं कि इतनी जल्दी जो जगह धृति की उसके दिल में है वो मुझे दे दे। धीरे धीरे वो समझ जाएगा और मैं उसके दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी, तुम परेशान मत हो। निहारिका के इस जवाब ने उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया था और मन हल्का हो गया था। सॉरी, थोड़ा वक्त दो मुझे, मैं समझा दूंगा कुश को। निहारिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराई, फिर निगाहें उसके गर्दन से लिपटे कुश की ओर घुमाते हुए उसने बड़े ही प्यार से उसे पुकारा, कुश बेटा, आपकी मम्मा नीचे आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगर आपको जल्दी से उनके पास जाना है तो फटाफट से तैयार हो जाइए। अगर आपने ज़िद की तो बैड बॉय बन जाएंगे, फिर आपकी मम्मा आपसे नाराज़ हो जाएंगी और सैड भी होंगी कि उनका बेटू बात नहीं मानता, तैयार नहीं होता, नंगू पंगू बनकर रहता है और ज़िद भी करने लगा है। निहारिका ने नाटकीय अंदाज में बड़े ही प्यार से कुश को समझाने की कोशिश की और उसकी बातों का असर जल्दी ही देखने को मिला। नो बेटू, बैड बॉय नहीं है, कुश ने अपना छोटा सा चेहरा निकालकर निहारिका को देखा। उसकी मासूम सी सूरत देखकर निहारिका की मुस्कुराहट गहरा गई। ओके, हमारा कुश बैड बॉय नहीं है, वो तो गुड बॉय है और गुड बॉयज बड़ों की बातें मानते हैं। चलिए इधर आइए मेरे पास, मैं आपको तैयार कर दूँ, फिर हम आपकी मम्मा के पास चलेंगे। निहारिका ने पुचकारते हुए अपने पास बुलाया। अब की बात कुश बिना कोई नखरे किए मृणाल की गोद से उसकी गोद में चला गया। निहारिका उसे अपनी बातों में बहलाते हुए बेड के पास ले आई, उसके साथ मस्ती और प्यारी प्यारी बातें करते हुए उसे तैयार करने लगी। कुश भी उसके साथ बहुत खुश नजर आ रहा था और मृणाल हाथ बांधे उन दोनों को देखते हुए किन्हीं ख्यालों में खोया था। कुश को कपड़े पहनाते हुए निहारिका की नज़र उस पर पड़ी और उसे यूं खड़े देखकर उसकी भौंरी सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। मृणाल, निहारिका के पुकारने पर मृणाल चौंकते हुए होश में लौटा और हड़बड़ाते हुए उसका रुख किया। हाँ, क्या हुआ, कुछ कह रही थी क्या तुम? तुम यहाँ खड़े होकर क्या सोचने लगे, गीले हो गए हो, जाकर नहा लो, फिर मुझे भी नहाना है, भूख लग रही है मुझे। जा रहा हूँ, मृणाल ने सर हिलाया और वापस बाथरूम की ओर बढ़ गया। निहारिका कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने अपना ध्यान कुश पर लगा दिया जो उसका ध्यान भटकते ही शैतानियां करने लगा था। कबीर और माधुरी का कमरा। सुबह के 8 बजने को थे, फोन में लगा अलार्म बज बज कर थक चुका था, पर दोनों में से कोई उठने को तैयार ही नहीं था। पहले शादी की थकान, उस पर देर रात गए दोनों की मस्ती चालू थी और अब नींद उन पर इस कदर हावी थी कि उनकी आँख ही नहीं खुल रही थी। साइड टेबल पर रखा फोन एक बार फिर बज उठा और अब की बार उनकी तेज आवाज से माधुरी की नींद खुल गई। उसने मिचमिचाते हुए अपनी आंखें खोली तो खुद को कबीर की बाहों के घेरे में कैद पाया। उस अलार्म की आवाज से इरिटेट होते हुए उसने अपनी कमर पर लिपटी कबीर की बाहों को हटाना चाहा, पर नींद की हसीन वादियों में खोए कबीर ने उस पर अपनी बाहों के घेरे को कसते हुए उसे खुद में भींच लिया। कबीर, छोड़ो मुझे, अलार्म बज रहा है, बंद तो करने दो। खुद तो तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो और तुम्हारा ये अलार्म मेरी जान खा रहा है। माधुरी पहले ही इरिटेट हो रखी थी, अब और ज्यादा खींच उठी। झुंझलाते हुए उसने कबीर के हाथ पर चिकोटी काट ली। उसके सर पर चढ़ी नींद की खुमारी एक झटके में सर से उतरी और हल्की सिसकारी भरते हुए उसने अपनी आंखें खोली और चिढ़ते हुए बोला, क्या कर रही हो यार, सुबह सुबह ऐसे बिना वार्निंग के हमला कौन करता है? मैं करती हूँ, अब छोड़ो मुझे, वरना अभी तो बस चींटी ही काटी थी, अब की बात मुंह पर पूरे पंजे का निशान छाप दूंगी। माधुरी ने खींचते हुए अपने जबड़े भींचे। उसकी बाहों को खुद पर से हटाने की उसकी कोशिश अब भी जारी थी और निगाहें उसे घूरने में लगी थी। उसकी धमकी सुनकर कबीर ने उसे छोड़ने में ही अपनी भलाई समझी, वरना उसके इरादे खतरनाक थे जो उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते थे। कबीर ने जैसे ही उसकी कमर को अपनी बाहों के घेरे से आजाद किया, चादर में लिपटी माधुरी ने हाथ बढ़ाकर फोन उठाया और अलार्म बंद करके फोन वहीं पटकते हुए वापस तकिए में मुंह छुपाए बिस्तर पर पड़ गई। कबीर, जिसकी नींद अब पूरी तरह से खुल चुकी थी, उसने टाइम देखा और बगल में पड़ी अपनी शर्ट उठाकर पहनने लगा। मधु, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तब तक तुम सो जाओ, फिर तुम भी फ्रेश हो जाना, ब्रेकफास्ट का टाइम होने वाला है। कबीर ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। माधुरी ने तकिए में मुंह छुपाए हुए ही सर हिलाते हुए हामी भर दी। कबीर ने प्यार से उसके सर को चूमा और उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गया, जबकि माधुरी एक बार फिर नींद की हसीन वादियों की सैर पर निकल गई। अब चलते हैं अपने सबसे आखिरी जोड़े के पास। सूरज की किरणों ने पूल साइड के ग्लास डोर से कमरे में प्रवेश किया और रात के अंधकार को मिटाते हुए उसे सुनहरी रोशनी से भर दिया। पर्दे से छनकर वो किरणें धृति के चांद से चेहरे पर बिखर गईं। गहरी नींद में गुम धृति ने कुना मुनाते हुए अजीब सा मुंह बनाया, फिर कसमसाते हुए अपना चेहरा अर्णव के सीने में छुपाकर अपनी बाहों को उसकी पीठ पर कसते हुए वापस सो गई। उसके इस अदा पर अर्णव के लब बेसाख्ता ही मुस्कुरा उठे। जाग रहा था वो और काफी फ्रेश के साथ खुश लग रहा था। उसने टाइम देखा, फिर धृति के खुले रेशमी बालों में उंगलियां घुमाने लगा। कुछ वक्त बीता, धृति की नींद कुछ कच्ची हुई, पर अब भी नींद की खुमारी उसके सर पर सवार थी। पूरी तरह से सेंसेस में नहीं लौटी थी वो, आधी नींद में ही बेचैनी से कसमसा रही थी। शायद रोशनी के वजह से उसे सोने में परेशानी हो रही थी। ये देखकर अर्णव ने उसे खुद से दूर करना चाहा और इसके साथ ही धृति की नींद खुल गई। अर्णव पर अपनी पकड़ कसते हुए उसने उनींदी आंखों से उसे देखा। गुड मॉर्निंग जान, अर्णव की मोहब्बत की मिठास उसके अल्फाजों में घुल गई और स्नेह भरा हाथ उसके गाल को सहलाने लगा। गुड मॉर्निंग, धृति ने अपनी खुलती बंद होती पलकों के दरमियान उसे देखा और अलसाए स्वर में सवाल किया, आप कब उठे?
अगर कहूँ कि मैं रात भर सो ही नहीं सका, कोशिश तो बहुत की पर नींद का एक कतरा भी मेरी आंखों में नहीं आया, तो? अर्णव का ये पूछना था कि धृति की सारी खुमारी एक झटके में गायब हो गई, आंखें आश्चर्य से फैल गईं और चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसने घबराई निगाहों से उसे देखा और चौंकते हुए सवाल किया, क्या सच में आप सारी रात नहीं सोए? उसे यूं परेशान होते देखकर अर्णव ने तुरंत ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले और मुस्कुरा दिया, मजाक कर रहा था, तुम्हारे उठने से बस थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ। झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? धृति को उसके इस बात पर विश्वास न हुआ। पहले जितनी संजीदगी से उसने वो बात कही थी, धृति क्या कोई भी उलझन में पड़ ही जाता। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे भला क्यों झूठ कहूंगा। अच्छा, ये सब छोड़ो और बताओ, मुझे कुछ देर और सोना है अभी तुम्हें। टू बी कंटिन्यूड।